जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रन जन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, नंदन ब्रज जन यशोदा जन रंजन, नंदन ब्रज जन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वन चारी, यमुना तीरा वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। पिछले रविवार हम महाराज ऋषभदेव की कथा सुन रहे थे। महाराज ऋषभदेव न केवल एक राज ऋषि थे, एक महान राजा थे, बल्कि वो भगवान के एक अंशावतार भी थे। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि ऐसे राज ऋषियों की कथाएं हमें अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसे राज ऋषि साधारण राजा नहीं थे और साधारण ऋषि भी नहीं थे, राजा होते हुए वो ऋषि थे। ये बहुत कठिन बात है, संसार में रहते हुए भगवान का शरण लेना कठिन है। तो इन राज ऋषियों ने हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण दिया है, हमें सिखलाया है कि हम अगर संसारी जीवन में हों, हम भी गृहस्थ जीवन में हों, या हम भी किसी समाज के जिम्मेदारी के पद में हों, फिर भी हमें भगवान के शरण कैसे ग्रहण करने चाहिए? क्योंकि इन राज ऋषियों ने भगवान का शरण लिया हुआ था, ये सब भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए इनकी कथाओं का श्रवण करके हम भी शुद्ध भक्ति के मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। हमारे पाठशालाओं में, विश्वविद्यालयों में इतिहास का विषय पढ़ाया जाता है और उनमें कई राजाओं का वर्णन आता है, लेकिन आधुनिक काल के इतिहास में ऐसे बहुत कम राजाओं के बारे में सुनने में आता है जो कि वास्तव में राज ऋषि थे, केवल राजा थे। राजा जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसे नारदेव कहते हैं, नर रूप में भगवान का प्रतिनिधि। इसलिए राजा को चाहिए कि वो अच्छी तरह से भगवान का शरण ले और भगवान के आज्ञा के अनुसार, धर्म के अनुसार राज्य को चलाए। लेकिन हमारे सामने कोई उदाहरण चाहिए, नहीं तो हम कैसे जान सकते हैं कि राजा को कैसे राज करना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये दो जो क्षत्रिय वंश हैं इस ब्रह्मांड में, इन दोनों का विस्तार में वर्णन किया और इन दो वंशों में जो भी महान राजऋषि आए उनके बारे में वर्णन परीक्षित महाराज को किया, हम सबके भलाई के लिए, ताकि हम इन राजाओं के बारे में सुन सकें, जान सकें, सीख सकें और उनके पद चिन्हों में चलकर हमारे जीवन को हम सफल बना पाए। तो आज हम एक ऐसे राजा की चर्चा करने वाले हैं जो भी राज ऋषि थे, भगवान के महान भक्त, और उनका नाम है महाराज प्रियव्रत। जैसे पिछले रविवार को हम चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मा जी इनके कई पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र थे स्वयंभुव मनु। स्वयंभुव मनु ब्रह्मा जी के प्रतिनिधित्व करते हुए सारे ब्रह्मांड का राज कारोबार संभाल रहे थे, और उनके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था राजा उत्तानपाद जो छोटे पुत्र थे, और दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। अब प्रियव्रत बड़े पुत्र थे और उनको राज सिंहासन पर बैठना चाहिए था, लेकिन उनके छोटे भाई उत्तानपाद राजा राज सिंहासन पर बैठे, तो ऐसे क्यों? इसके पीछे एक इतिहास है। जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित को ध्रुव महाराज के वंश में आने वाले जो राजाएं हैं उनका वर्णन करते आ रहे थे, तब वो राजा प्राचीन बरिषद के 10 पुत्र जिनका नाम प्रचेत था उस स्तर तक पहुंच गए। अब महाराज ध्रुव के बच्चे एक लड़के थे जिनका नाम था वत्सर। वत्सर के वंश में आने वाले कई राजा हुए, उनमें से चाक्षुष मनु, आगे चल के आए महाराज वेन, फिर महाराज पृथु। महाराज पृथु के पुत्र का नाम था अंतर्धान। अंतर्धान महाराज के पुत्र का नाम था प्राचीन बरिषत या केवल राजा बरही, बरिषत, और उनको नारद मुनि ने अच्छा उपदेश सुनाया था। और राजा प्राचीन बरिषत के पुत्र थे ये 10 प्रचेता। तो यहां तक कथा पहुंची थी। अब तक केवल राजा उत्तानपाद के वंश के वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे थे और प्रचेत के वर्णन के पहुंचने तक उन्होंने प्रियव्रत महाराज के बारे में कुछ कहा नहीं था, लेकिन अब वो कहने लगे कि महाराज प्रियव्रत, उनको नारद मुनि ने उपदेश दिया था और उपदेश ग्रहण करने के बाद कई सालों के बाद फिर से वो गृहस्थ जीवन में आए और कई सालों तक उन्होंने राज को संभाला और फिर बाद में भगवान के धाम में वापस चले गए। जब इतना सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया तो परीक्षित महाराज के मन में एक प्रश्न आया, एक संशय हुआ। उन्होंने पूछा कि हे ब्राह्मण, हे सुखदेव गोस्वामी, मेरे मन में ये बात को सुनकर एक संशय उत्पन्न हो रहा है कि महाराज प्रियव्रत, जो कि नारद मुनि जैसे महाभागवत के शिष्य थे और वो वैराग्य का जीवन अपना रहे थे, गंधमाधन पर्वत पर जाकर तपस्या कर रहे थे, इतने लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की, और फिर ये कैसे संभव है कि ऐसे ऊंचे पहुंचे हुए व्यक्ति फिर से संसारी जीवन में चले आए। और हमने सुना है कि जिनकी इंद्रियां बिल्कुल वश में हैं, उनको संसार में बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं होती है। और फिर हमने ये भी सुना कि महाराज प्रियव्रत बड़े ऐश्वर्यशाली जीवन, बड़े भोग का जीवन जी रहे थे अपने गृहस्थ आश्रम में। और हमने ये भी सुना कि इतना होते हुए भी वो भगवान के धाम में चले गए। तो ये दो प्रश्न हमारे मन में आते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी। ये पहली बात कि इतना तपस्या का जीवन बिताने के बाद, नारद मुनि के आदेशों का पालन करने के बाद, ये कैसे हुआ कि वो फिर से गृहस्थी जीवन में आ गए, फिर से राजा का पद उन्होंने स्वीकार किया। ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, जब वो राजा बने, बड़े ऐश्वर्य के वातावरण में रहते थे, ऐसे होते हुए उनको भगवान के धाम की प्राप्ति कैसे हो गई? क्योंकि हमने सुना है कि केवल उन लोगों को भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है जो तपस्या करते हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, बहुत सरल जीवन जीते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह तो बिल्कुल सही बात है जो आपने कहा है, लेकिन इसके लिए आपको इतिहास बताना होगा। अब राजा उत्तानपाद राजगद्दी पर क्यों बैठे थे? क्योंकि हालांकि महाराज प्रियव्रत बड़े भाई थे, फिर भी बहुत कम उम्र में राजा प्रियव्रत घर छोड़कर नारद मुनि के आदेश के अनुसार तपस्या करने गंधमादन पर्वत में चले गए। तो स्वयंभू मनु ने देखा कि चलो, अब ये मेरा एक पुत्र रह गया, उसको राजगद्दी पर बिठाना चाहिए। और फिर राजा उत्तानपाद के जो पुत्र हुए, उनमें से उत्तम, फिर ध्रुव, ध्रुव महाराज राजगद्दी पर बैठे, और उनके वंश में आने वाले सब राजा प्रचेत तक अच्छी तरह से राज कर रहे थे, सिवाय राजा वेन के, जिनको कि ब्राह्मणों ने फिर मार डाला, और फिर पृथु महाराज गद्दी पर आए। लेकिन जब प्रचेत वहां आए, उनके बाद में कोई योग्य राजा नहीं दिखाई पड़ा, तो स्वयंभू मनु ने सोचा कि अब क्या किया जाए। याद रखिएगा कि स्वयंभू मनु वो सारे ब्रह्मांड के राजा थे, न कि केवल पृथ्वी के राजा। हम श्रीमद् भगवत गीता में सुनते हैं, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन वे प्राहुर मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। ये जो समय है वो वैवस्वत मनु का समय है। ये मनमंत्र सूर्यदेव या विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु का समय है, उनका युग है ये। और उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु महाराज को ये उपदेश दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को उपदेश दिया, सूर्यदेव ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को उपदेश दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, और इस प्रकार से परंपरा चलती आई। तो राजा इक्ष्वाकु इत्यादि ये तो केवल पृथ्वी के राजा थे, लेकिन राजा उत्तानपाद के बारे में बताया जाता है, और स्वयंभू मनु के बारे में भी, कि वो सारे ब्रह्मांड के राजा थे। तो देखिए कितने बड़े राजा, छोटे मोटे एक दो शहरों के या एक दो लोगों के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के राजा थे। तो स्वयंभू मनु ने सोचा कि अभी एक ही उपाय रह गया, और वो है कि मुझे मेरे बड़े पुत्र प्रियव्रत को वापस बुला लेना होगा। वो तपस्या करने के लिए जंगल में गया है, गंधमादन पर्वत पर गया है, और अभी आवश्यकता है सारे ब्रह्मांड को कि एक योग्य राजा बने। प्रियव्रत हर दृष्टि से योग्य है, क्योंकि उसने बहुत तपस्या की है, और तपस्या के बल पर उसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति होगी जिससे कि वो ब्रह्मांड का कार्य को संभाल पाएगा। तो ये विचार से स्वयंभू मनु गंधमादन पर्वत पर गए और अपने पुत्र को गृहस्थ जीवन में आने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे थे, जैसे कि अक्सर माता पिता करते हैं जब लड़का ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करता है। तो कहां कहां ढूंढने जाते हैं बेटे को, अगर बेटा कहीं दूसरे जगह गया तो माता पिता दूर जाते हैं पिता के बच्चे के पीछे, फिर उसे ढूंढकर वापस ले आते हैं घर में। तो स्वयंभू मनु के परंपरा में चल रहे हैं। तो स्वयंभू मनु गंधमादन पर्वत जो कि दूसरे ग्रह में था, लोक में था, वहां पर गए और वहां पर प्रियव्रत को ढूंढ निकाला और फिर प्रियव्रत से कहने लगे कि अभी एक राजा की आवश्यकता है, तुम वापस चले आओ, बहुत साल तुमने तपस्या कर ली है, अभी तुम्हारी आवश्यकता है। तो प्रियव्रत ने सोचा कि स्वयंभू मनु तो मेरे पिता हैं, उनका निरादर नहीं कर सकते, परंतु मुझे ये विचार करना चाहिए कि अगर मैंने राजगद्दी स्वीकार कर ली तो इसका असर मेरे भक्ति के ऊपर क्या होगा, कि मेरा भक्ति से पतन हो सकता है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड के राजगद्दी को संभालना कोई छोटी बात नहीं है, इतना ऊंचा स्थान है, इतना ऐश्वर्य, और जब किसी व्यक्ति के मन में बहुत सारा ऐश्वर्य बल आ जाता है तो हो सकता है उसका मन भ्रमित हो सकता है और भक्ति मार्ग से उसका पतन भी हो सकता है। तो राजा जो प्रियव्रत ने थोड़ा विरोध किया अपने पिता के आदेश का, हालांकि बड़े अपने पिताजी का निरादर नहीं किया, परंतु अपने विचार को व्यक्त किया कि मैं राजगति पर बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। तो स्वयंभू मनु सोच रहे थे कि क्या किया जाए। पहले से ही स्वयंभू मनु बड़े चिंतित थे क्योंकि उनके पुत्र प्रियव्रत के गुरु थे नारद मुनि, और जो भी नारद मुनि के शिष्य बन जाते हैं उनके लिए संसार तो दूर की बात हो जाती है, कोई भी उनको आके वहां से वापस नहीं ले जा सकता। दक्ष प्रजापति ने बहुत कोशिश की, पहले उनके 10,000 पुत्र और उसके बाद में 1,000 पुत्र, सबको नारद मुनि ने ब्रह्मचारी बनाकर घर से भेज दिया, और नारद मुनि हर जगह ब्रह्मांड भर में घूमते रहते हैं और लड़कों को ब्रह्मचारी बना के रख देते हैं, इसलिए ब्रह्मांड भर के माता पिता नारद जी से बहुत घबराते हैं। तो इस प्रकार से स्वयंभू मनु को पता था कि नारद देव जो कि उनके भाई हैं, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो उन्होंने वैराग्य के बारे में उपदेश दिया है उनके पुत्र को, तो वो जानते थे कि मेरे बस की बात नहीं है, अब मामला मेरे हाथों से बाहर निकल गया है क्योंकि नारद देव ने आके उपदेश दिया है, तो क्या करना चाहिए मुझे, मेरा पुत्र तो मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो फिर स्वयंभू मनु अपने पिता के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करता है, क्यों, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रह्मा जी भी नारद देव के गुरु हैं, तो अगर परम गुरु कुछ कहे तो गुरु कुछ नहीं बोल सकते, तो शिष्य को मानना ही पड़ेगा। तो स्वयंभू मनु ने यह तरकीब सोची, तो संदेश भेजा उन्होंने, ब्रह्मा जी को पता चला कि अभी राजगद्दी पर बैठने के लिए कोई नहीं है और प्रियव्रत जो कि नारद मुनि के शिष्य हैं वो वैराग्य की जीवन को छोड़ना नहीं चाहता है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो अभी मुझे कुछ जाकर करना होगा। तो फिर ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर बैठे और ऊपर के लोकों के जो निवासी हैं, जैसे सिद्ध लोक के, गंधर्व लोक के, विद्याधर लोक के इत्यादि, यहां तक कि शिवजी इत्यादि, ये सब आए ब्रह्मा जी के साथ में। जब भी ब्रह्मा जी कहीं जाते हैं तो ऊपर के लोकों के निवासियों को साथ में लेकर जाते हैं, खास करके जब वो नीचे के लोकों में आते हैं, भूवर लोक में आते हैं तब। तो जब उस समय स्वयंभू मनु प्रियव्रत के साथ में गंधमादन पर्वत पर थे, उस समय नारद मुनि भी वहां उपस्थित थे, तो तीनों के बीच में चर्चा चल रही थी और अचानक तीनों ने आकाश में देखा कि ब्रह्मा जी आकाश पथ से आ रहे हैं हंस वाहन पर सवार होकर, सारे सिद्ध, चारण, विद्याधर, गंधर्व इत्यादि सब आ रहे हैं, शिवजी भी आ रहे हैं साथ में, तुरंत खड़े हो गए। तो इससे हमें पता चलता है कि मामला कितना गंभीर था कि ब्रह्मा जी को स्वयं अपने धाम को छोड़कर यहां हंसवान पे आना पड़ा। मान लीजिए कि हमारे कोई पारिवारिक समस्या का हल करने के लिए प्रधानमंत्री हमारे घर में आ जाए तो फिर हम समझ सकते हैं कि मामला बहुत गंभीर है। तो इसी प्रकार से नारद मुनि ने भी समझ लिया और प्रियव्रत ने भी समझा कि मामला अभी काफी गंभीर हो गया है, अभी स्वयं ब्रह्मा जी यहां आ रहे हैं। तो तीनों उठे, उन्होंने नमस्कार किया, ब्रह्मा जी का बड़े अच्छी तरह से स्वागत किया और उस समय ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी के आंखों में भी एक चमक थी, होठों पे हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वो ब्रह्मा जी जानते थे कि अब मेरे बीच में और प्रियव्रत के बीच में थोड़ा खेल होने वाला है। क्या खेल होगा? मैं प्रियव्रत से कहने वाला हूं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, शादी करो और राजा का पद स्वीकार करो, और प्रियव्रत कहेगा नहीं मुझे ब्रह्मचारी रहना है, मुझे गृहस्थ नहीं बनना है, राजा नहीं बनना है, तो हमारे बीच में थोड़ी खींचातानी होने वाली है। आखिर ब्रह्मा जी जो हैं वो दादा थे प्रियव्रत के, तो दादा और पोते के बीच में कभी कभी ऐसी हंसी मजाक या खींचातानी होती भी है, तो इसके बारे में कोई गंभीरता नहीं है। तो ब्रह्मा जी जब आए, बड़े करुणा की दृष्टि से वो प्रियव्रत की ओर देखने लगे। प्रियव्रत को देखकर वो कहने लगे कि हे प्रियव्रत, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, भगवान श्री हरि से बिल्कुल द्वेष नहीं करना। ये जान लो कि जो भी भगवान श्री हरि का आदेश होता है या उनकी इच्छा होती है हम सबको पालन करना पड़ता है, यहां तक कि शिवजी, नारद जी, मनु और यहां तक मुझे भी उनके आदेशों का पालन करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में 12 महाजन हैं। महाजन मतलब महान भक्त, भगवान के महाभागवत। वैसे तो बहुत सारे महाभागवत हैं, लेकिन इन 12 महाजनों का वर्णन विशेष तक किया जा रहा है श्रीमद् भागवत में। और इन 12 महाजनों में से 4 महाजन यहां पर उपस्थित थे गंधमादन पर्वत पर। कौन से वो 4 महाजन थे? पहले तो ब्रह्मा जी थे, फिर स्वयंभू मनु, फिर नारद मुनि और फिर शिव जी। तो 4 महाजन वहां बीच में थे। अब नारद मुनि एक महाजन एक बात बोल रहे हैं, दूसरे महाजन स्वयंभू मनु उल्टी बात बोल रहे हैं, और ब्रह्मा जी आकर देख रहे हैं क्या किया जाए, और शिव जी मजा देखने के लिए आए हैं। तो यूं ही आए हैं देखने के लिए कि चलो हम ब्रह्मा जी का संग करने जाते हैं, ब्रह्मा जी भी वरिष्ठ वैष्णव हैं। तो वहां सब जो इकट्ठे थे तो ब्रह्मा जी बोल रहे थे, हे प्रियव्रत, जान लो कि हम चारों को भी भगवान का आदेश का पालन करना पड़ता है, कोई इस आदेश के बाहर नहीं जा सकता है और न ही हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि भगवान के आदेश कि अंदर हम सब बद्ध हैं और हमें भगवान का आदेश पालन करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। भगवान ने हमारे लिए वर्णाश्रम धर्म बनाया है और ये वर्णाश्रम धर्म के नियम जो हैं उनका पालन हमें करना चाहिए, और ये नियम ऐसे होने चाहिए जैसे कि एक बैल के नाकों से या नसिकों से एक रस्सी जो निकलती है और फिर किसान उस बैल को अच्छी तरह से उसे नियंत्रित कर सकता है, तो उसी तरह भी हमें शास्त्रों के आदेशों को के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, शास्त्रों के आदेशों का शरण हमें लेना चाहिए, और जैसे शास्त्र कहते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें करना चाहिए। जैसे कि जब किसान उस रस्सी को खींचता है तो जिस तरह वो खींचता है बैल को उसी तरह जाना पड़ता है, तो ठीक उसी प्रकार हमें भी शास्त्रों के बताए हुए आदेश के अनुसार चलना चाहिए। अगर हमें कोई वस्तु अच्छी लगती है लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये नहीं करो तो हमें नहीं करना चाहिए, और अगर हमें कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती लेकिन शास्त्र कहते हैं कि तुम्हें करना चाहिए तो हमें करना चाहिए। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी समझाने लगे कि हमें हर तरह हर दृष्टि से भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए और उनका पीछा करना चाहिए, जैसे एक अंधा आदमी दूसरे आदमी के हाथ पकड़कर चलता है जिसके की आंखें हैं, उसी प्रकार जैसे भगवान हमें मार्ग दिखलाते हैं वैसे हमें चलते रहना चाहिए। ये समझ लो हे प्रियव्रत कि मैं केवल अकेला नहीं आया, मैं भगवान श्री हरि का आदेश लेकर यहां पर आया हूं। भगवान श्री हरि का आदेश है कि तुम यहां पर लौट कर आओ और ब्रह्मांड के राज को संभालो। और क्योंकि भगवान का यह आदेश है और हम सब वरिष्ठ वैष्णवों की कृपा तुम्हारे ऊपर रहेगी, तो गृहस्थ जीवन में और राजा के जीवन में रहते हुए भी तुम्हारा पतन नहीं होगा। तुम भक्ति मार्ग में अच्छी तरह से चल पाओगे, प्रगति कर पाओगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति का पतन हो जाता है तो दो कारणों से हो सकता है। एक हो सकता है वैष्णव अपराध से। जब हम दूसरे वैष्णवों के प्रति कोई अपराध करते हैं तो फिर उस अपराध के फलस्वरूप हमारा पतन हो सकता है। यह वैष्णव अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है। जैसे अगर कोई पागल हाथी एक बगीचे में आ जाए तो वो क्या करेगा? वो बगीचे को खराब कर देगा, सारे फूलों को वृक्षों को तोड़ डालेगा, तहस नहस कर देगा उस सारे बगीचे में। ठीक उसी तरह से जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में तहस नहस हो जाता है, हमारे पतन होने की संभावना भी होती है। तो ये एक कारण होता है जिसके लिए हम भक्ति मार्ग को छोड़ सकते हैं या हमारा पतन हो सकता है। लेकिन दूसरा भी कारण है जो कि बहुत गुप्त है, और वो क्या है? वो है भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा से भी किसी व्यक्ति का पतन हो सकता है, लेकिन हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमने भक्ति छोड़ दिया, माला छोड़ दी, ये भगवान की इच्छा है। हम मंदिर में नहीं आते पिछले 2 महीने, ये भगवान की इच्छा है। हमने फिर से टीवी देखना, सिनेमा देखना शुरू किया, ये भी भगवान की इच्छा है। नहीं, ये हमारी माया है, हम माया में पड़े हैं इसलिए हम ये सब करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन भगवान जब ऐसे आदेश देते हैं किसी व्यक्ति को फिर से संसार के जीवन में आने के लिए, तो वो विशेष व्यक्तियों को देते हैं। जैसे कि जब 4 कुमार वैकुंठ लोक में गए थे तो वैकुंठ के द्वारपाल, जो कि भगवान श्री विष्णु के बड़े निकट के पार्षद थे जिनका नाम था जय और विजय, उनका पतन हुआ क्योंकि 4 कुमारों को उन्होंने साधारण बालक समझकर रोक दिया। वो नहीं जानते थे कि ये 4 कुमार ब्रह्मा जी के वरिष्ठ पुत्र हैं और इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं। तो जब 4 कुमारों ने देखा कि उनका विरोध इस प्रकार से हो रहा है तो उनको क्रोध आया और उन्होंने जय और विजय को शाप दिया कि तुम्हारा पतन होगा वैकुंठ लोक से और तुम पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें। वैकुंठ लोक में वैसे ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि तुम लोगों के हृदय में इतनी ईर्ष्या है। तो तुम पृथ्वी लोक मर या भौतिक ब्रह्मांड में जाने के लिए तुम योग्य हो। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि 4 कुमार ऐसे शाप कैसे दे सकते हैं और जय और विजय 4 कुमार जैसे ऋषियों को रोक कैसे सकते हैं। वास्तव में आचार्य समझाते हैं कि यह भी भगवान की इच्छा से हुई, क्योंकि भगवान अपने वीर रस का आस्वादन इस संसार में करना चाहते थे। वो भी कुछ लड़ाई युद्ध करना चाहते थे, लेकिन उनके धाम में कहां लड़ाई करेंगे वो? वहां तो सब कुछ शांति है, सुख है, आनंद है वहां पर, वहां कोई युद्ध नहीं, लड़ाई नहीं। तो उनको यहां आना पड़ता है भौतिक ब्रह्मांड में युद्ध करने के लिए। लेकिन युद्ध करेंगे तो उनके सामने कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी भी चाहिए, और संसार के लोग भला कैसे उनका सामना कर सकेंगे? तो उन्होंने सोचा कि अगर मुझे युद्ध करना है तो कोई शत्रु चाहिए, और शत्रु बनने की शक्ति किसमें है? केवल मेरे भक्तों में ही है। तो मेरे भक्तों को ही मुझे शत्रु बनाना चाहिए। शत्रु बनने का नाटक उनको वो रोल या भूमिका देनी चाहिए। तो फिर जय और विजय बन गए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और फिर उसके बाद के जीवन में बने रावण और कुंभकर्ण, और उसके बाद के जीवन में बने शिशुपाल और दंतवक्र। तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा से जय और विजय का पतन हुआ। लेकिन साधारणतः ऐसे नहीं देखा जाता, लेकिन प्रियव्रत महाराज के जगह हम देखते हैं कि यह भी भगवान की इच्छा थी। तो ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा कि हे प्रियव्रत, ये सुन लो, ये बड़े अद्भुत बात है कि भगवान तुम्हें भोग के जीवन में देखना चाहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है ना, हम सबके लिए भगवान के आदेश देते हैं भोग का जीवन छोड़ो और भगवान की भजब का भजन करो, भगवान की भक्ति करो, लेकिन प्रियव्रत के लिए भगवान का आदेश था कि वो राजा बने, बड़े बड़े महल में रहे, ऐश्वर्य के वातावरण में रहे। और ब्रह्मा जी कहने लगे कि विश्वास करो, भगवान का निजी आदेश है तुम्हारे लिए कि तुम इस पद को स्वीकार करो। तो इसलिए भगवान के से द्वेष न करते हुए भगवान के आदेश का पालन करो और राजपद को स्वीकार करो। अभी ऐसा आदेश भगवान कभी कभी बहुत शुद्ध भक्तों को देते हैं, जैसे कि उन्होंने ध्रुव महाराज को कहा। जब ध्रुव महाराज ने भगवान श्री विष्णु की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी, 6 महीनों में उन्होंने भगवान की प्राप्ति की बहुत कड़ी तपस्या करके, और अंत में जब उन्हें भगवान प्राप्त हुए तो ध्रुव महाराज ने कहा, स्थानाभिलाषी तपस्थितोहम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। वो कहने लगे कि हे प्रभु, अवश्य मैंने आपकी सेवा की थी, मैंने तपस्या की थी एक बहुत बड़े राज्य की प्राप्ति के लिए, सारे ब्रह्मांड के राजपद को प्राप्त करने के लिए मैंने यह तपस्या की। स्थानाभिलाषी, ऐसे ऊंचे स्थान की अभिलाषा मैं कर रहा था, तपसी स्थितो हम, इसलिए मैंने अपने आप को तपस्या में स्थित कर दिया। और तपस्या में स्थित करने के बाद त्वाम प्राप्तवान, मैंने आपको प्राप्त कर दिया, देव मुनीन्द्र गुह्यम, और आपको प्राप्त करना बड़े बड़े देवताओं के लिए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए बहुत कठिन है, लेकिन मेरे लिए सुलभ हो गया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं, काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, कि मैं आपके पास टूटे हुए कांच के टुकड़ों के लिए मांग रहा था। आपका दर्शन अब जब हो गया मुझे, तो मैं समझ रहा हूं कि आपका दर्शन, आपकी भक्ति एक अनमोल रत्न है, और सारे ब्रह्मांड का राजपद भी टूटे कांच के टुकड़ों के बराबर है। इसलिए स्वामी, हे प्रभु, कृतार्थ है, मैं अभी पूरी तरह से संतुष्ट हूं, मुझे कोई राजपद नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, आपकी भक्ति हो गई, मैं संतुष्ट हूं। वरम न याचे, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान बड़े संतुष्ट हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, नहीं, तुम मेरे पास वरदान के लिए आए थे और तुम्हें वरदान लेना होगा, अब तुम राज करो यहां पर और कभी मुझे भूलो नहीं, और अंत में तुम मेरे पास लौटकर आओगे, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि भौतिक संसार का स्पर्श करते हुए भी तुम्हारा पतन नहीं होगा, और अंत में तुम मेरे पास लौटकर आओगे। और इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने 36,000 साल ब्रह्मांड में राज किया। तो भगवान ने ध्रुव महाराज को आदेश दिया कि तुम राजा का पद स्वीकार करो, ऐश्वर्य के वातावरण में रहो, लेकिन कभी मुझे भूलना नहीं, और इस प्रकार से मेरी सेवा करते करते अंत में तुम मेरे पास आओगे। ठीक उसी प्रकार से भगवान नरसिंह देव ने भी प्रह्लाद को उपदेश दिया था। जब नरसिंह देव प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और साथ साथ उनकी सेना का भी वध किया, और खुद जाकर वो राज सिंहासन पर बैठे और जोर जोर से गरजने लगे, और सारे देवी देवता भी बहुत घबरा गए थे उस समय, और अंत में प्रह्लाद महाराज ने जाकर नरसिंह देव को शांत किया, और फिर नरसिंह देव बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे प्रह्लाद, मैं तुमसे और तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम कभी भी क्लास में नहीं सोते थे, हाँ, वो ये केवल उन लोगों को जगाने के लिए है जो सो रहे हैं, पर भगवान ने नहीं कहा। तो वो कहने लगे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने मेरी भक्ति इतनी अच्छी तरह से की है। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं हर प्रकार का वरदान तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, मैं व्यापार करने के लिए आपके पास नहीं आया, शॉपिंग लिस्ट लेकर नहीं आया आपके पास कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए वो इच्छा पूरी कीजिए, नहीं, मुझे केवल आपका दर्शन हुआ यही मेरे लिए बहुत कुछ है, आपकी सेवा करने का मौका मुझे मिले यही मेरे लिए बहुत है। तो भगवान ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम यहां इसी राज सिंहासन पर बैठकर तुम पृथ्वी का और ब्रह्मांड का राज करो, इस प्रकार से तुम मुझे संतुष्ट कर पाओगे और राज करते करते मुझे कभी भूलना नहीं। मैं भी तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं और अंत में तुम मेरे पास लौटकर आओगे। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने भी न चाहते हुए राज की जिम्मेदारी संभाली। भक्त का गुण यह होता है कि वो भौतिक संसार से बिल्कुल निरासक्त होता है, उसे ऐश्वर्य के प्रति, किसी ऊंचे पद के प्रति कोई अपेक्षा या कोई अभिलाषा नहीं रहती। लेकिन अगर ऐसे उसे बताया जाए, वरिष्ठ वैष्णव या उसके गुरु या भगवान खुद बताएं, नहीं आपको यह पद स्वीकार करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, तो फिर उसे स्वीकार करना चाहिए और उस पद में रहकर उसे एक सेवा समझकर ऐसे जीकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। युक्त वैराग्य मतलब जब हम भगवान के हर वस्तु, संसार के हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो युक्त वैराग्य ये एक ऐसा वैराग्य है जो असली वैराग्य है। केवल हम संसार को त्यागते हैं और फिर कहते हैं कि हम इसको छुएंगे नहीं, उसको छुएंगे नहीं, यह पूर्ण वैराग्य नहीं है। असली वैराग्य वो है कि जब हम संसार की चीजों का प्रयोग भी कर सकते हैं लेकिन हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि कई साधु ऐसे हैं, जब आप उनके सामने कोई पैसा रखते हैं तो अपने हाथ को पीछे ले लेते हैं। वो कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं तो साधु हूं, मैं वैराग्य हूं, मैं पैसे को छू नहीं सकता क्योंकि पैसा ये माया है। लेकिन प्रभुपाद कहने लगे, मैं ऐसा साधु नहीं हूं, कोई आके सामने हाथ पैसे अगर रखेगा तो मैं हाथ बाहर करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा क्या है, ये लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी देवी को केवल नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। लक्ष्मी देवी का स्थान नारायण के वक्षस्थल पर है, उनके चरण कमलों में है। तो पैसे का सही उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए, न हमारी इंद्र तृप्ति के लिए। तो यह है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब संसार में रहकर संसार की वस्तुओं का स्वयं की इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल न करते हुए केवल भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना, यह है युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य किसी भी आश्रम में हो सकता है, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ या संन्यास। तो इसलिए भगवान का आदेश था कि जैसे उन्होंने ध्रुव महाराज को आदेश दिया था, प्रहलाद महाराज को आदेश दिया था, उसी प्रकार उन्होंने प्रियव्रत को भी आदेश दिया और ये आदेश को ब्रह्मा जी के माध्यम से वहां भिजवा दिया। तो जब ब्रह्मा जी का आदेश सुना प्रियव्रत ने, तो अपना सर झुकाया और तुरंत उस आदेश को स्वीकार किया। हालांकि उनके लिए बहुत कठिन था, वो नहीं प्रवेश करना चाहते थे गृहस्थ आश्रम में, बड़ा राजा बनने के लिए उनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान का आदेश है तो भक्त का यह गुण होता है कि अपने कठिनाई को, अपनी इच्छाओं को न देखते हुए केवल भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। यह है भक्ति। हर अवस्था में संसिद्धिर हरितोषणम, कैसे हम श्री हरि श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, ये भक्त के मन में विचार रहता है। भक्त कभी ये नहीं देखता कि मुझे अच्छा क्या लगता है, भक्त हमेशा ये देखता है कि भगवान को अच्छा क्या लगता है और भगवान के भक्तों को अच्छा क्या लगता है, और वही कार्य वो करता है। इस प्रकार से प्रियव्रत ने स्वीकार कर लिया भगवान का आदेश और राजपद स्वीकार कर लिया। अब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि दोनों नारद मुनि और प्रियव्रत के हृदय में कोई द्वेष भावना ब्रह्मा जी के प्रति जागृत नहीं हुई। नारद मुनि ने यह नहीं सोचा कि अरे मैंने प्रियव्रत को आदेश दिया था तुम ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ आश्रम में मत जाओ, राजा मत बनो, और यहां ब्रह्मा जी आकर पूरा उल्टा संदेश देकर मेरे शिष्य को ले जा रहे हैं। स्वाभाविक है किसी साधारण व्यक्ति के हृदय में द्वेष उत्पन्न हो जाता था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि नारद मुनि इतने महान भक्त हैं, महाभागवत हैं, उनके हृदय में द्वेष तो क्या केवल आदर ही आदर था ब्रह्मा जी के प्रति। उन्होंने सोचा कि यह भी भगवान का आदेश होगा, यह भी भगवान की इच्छा होगी। उसी प्रकार से प्रियव्रत राजा के हृदय में भी आश्रम को स्वीकार किया। जब कोई गृहस्थ में आता है तो उसे विवाह करना चाहिए, नहीं तो गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या होता है? अगर हम घर में रहते हैं तो हमें विवाह करना चाहिए, घर में नहीं रहना चाहते हैं तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम में या संन्यास आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम उनके लिए है जिन्होंने विवाह किया है विवाह जीवन में। तो प्रियव्रत महाराज ने विश्वकर्म प्रजापति के पुत्री बरहिष्मती के साथ विवाह किया और उनके 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे आग्निद्र, वो प्रियव्रत महाराज के बाद में राजा बने, और उनके और 3 पुत्र थे जो आगे चल के सन्यासी बने। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजाओं के पुत्रों में भी, जैसे ऋषभदेव महाराज के बारे में पिछले रविवार को चर्चा कर रहे थे कि उनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों में से 9 पुत्र परमहंस सन्यासी बन गए और वो नव योगेंद्र के नाम से विख्यात हैं। और इसके अलावा और उनके 81 पुत्र थे जो कि ब्राह्मण बने, बड़े क्षत्रिय थे लेकिन फिर भी उनके 81 पुत्र ब्राह्मण बन गए। और उसी तरह से महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से 7 क्षत्रिय रहे और 3 सन्यासी बन गए। संसार को त्याग दिया उन्होंने और फिर इधर उधर भगवान का भजन करते हुए ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते थे। अब महाराज प्रियव्रत की इतनी शक्ति थी कि वो अद्भुत कार्य करते थे। सुखदेव एक ऐसे 1 या 2 अद्भुत कार्यों का वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में। एक बार प्रियव्रत महाराज सोचने लगे कि सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर सुमेरु पर्वत का चक्कर लगाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जब सूर्यदेव सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में होते हैं तो दक्षिण भाग में अंधकार हो जाता है, और जब सूर्यदेव घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में आ जाते हैं तो उत्तर भाग में अंधकार हो जाता है। तो प्रियव्रत महाराज को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि सारे ब्रह्मांड में हर समय उजाला होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, खुद अपने रथ पर बैठे, और इतना तेजस्वी था उनका रथ कि मानो वो एक दूसरा सूर्य बन गया। और जब सूर्यदेव दक्षिण भाग में होते तो प्रियव्रत महाराज उत्तर भाग में रहते, और जब सूर्यदेव उत्तर भाग में आते तो प्रियव्रत महाराज दक्षिण भाग में आते। इस प्रकार से दोनों सूर्यदेव और प्रियव्रत महाराज सुमेरु पर्वत के इर्द गिर्द घूमने लगे, चक्कर काटने लगे, और इस प्रकार से सारे ब्रह्मांड में हर समय उजाला होता था। इस प्रकार से प्रियव्रत महाराज की शक्ति थी कि वो प्राय एक दूसरे सूर्य भगवान बन गए, सूर्यदेव बन गए, और अपने रथ को चलाते चलाते सारे भूमंडल को उन्होंने 7 विभाजनों में, 7 भागों में विभाजित किया। तो सोचिए कि उनका रथ कितना बड़ा हुआ होगा और रथ के चक्के कितने बड़े हुए होंगे कि चलते चलते भूमंडल को उन्होंने 7 भागों में विभाजित करके 7 सप्तद्वीप बनाए, 7 सागर बनाए, और क्योंकि 7 सागर बने इसलिए सप्तद्वीप भी बन गए भूमंडल के। और ये जो 7 सागर हैं किस चीज के बने हुए हैं? अलग अलग पदार्थों के, नमकीन जल से, घी से, तेल से, दूध से इत्यादि। हमारे पृथ्वी लोक में हमें अनुभव है कि यहां पर जो सागर है वो नमकीन जल से बना हुआ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य ग्रहों में भी सागर इसी पदार्थ का बना हुआ होता है। हम सुनते हैं क्षीर सागर के बारे में, श्वेत द्वीप जहां पर क्षीरोदकशायी विष्णु रहते हैं, शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हैं भगवान विष्णु, तो वो सागर तो दूध का बना हुआ है इसलिए उसे क्षीर सागर कहते हैं। और क्योंकि विष्णु उस सागर में अनंत शेष कुशैया बनाकर विश्राम करते हैं, उन्हें क्षीर उदकशायी विष्णु कहते हैं, जो क्षीर के सागर में विश्राम करते हैं। तो ऐसे ऊपर के लोकों में ऐसे कई सागर हैं, नदियां हैं, जो अलग अलग पदार्थों से बने हुए हैं। और इस प्रकार से पर्यव्रत महाराज ने पहली बार ब्रह्मांड में ये सप्तद्वीपों का निर्माण किया और फिर 7 सागर भी बने। इस प्रकार से पर्यव्रत महाराज राज कर रहे थे। कितने कितने सालों तक उन्होंने राज किया? 11 अर्बुद साल। 1 अर्बुद मतलब 10 करोड़ साल। तो 11 अर्बुद साल कितने हुए? 110 करोड़ साल। बस उन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया। हमें याद रखना चाहिए कि पर्यव्रत महाराज इत्यादि वो केवल पृथ्वी लोक के निवासी नहीं थे, सारे ब्रह्मांड के राजा थे वो। तो ब्रह्मांड के जीवन की अवधि में 110 करोड़ साल कोई इतनी बड़ी अवधि नहीं है, इतना बड़ा समय नहीं है, लेकिन हमारे दृष्टि से हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि छोटा जो कीड़े होते हैं या छोटे जो चींटियां होती हैं, खास करके रात को जो ऐसे हम प्राणी देखते हैं कि केवल 1 घंटे 2 घंटे रात को उनका जीवन होता है, फिर मर जाते हैं, फिर आग में या रोशनी की ओर जाकर अपने आप को मार डालते हैं। तो अगर उनके अंदर सोचने की बुद्धि रहती और अगर वो जान सकते कि मनुष्य की जीवन की अवधि 80 साल 90 साल की है, तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जीवन की अवधि 2 घंटे है, लेकिन वो 2 घंटे उनके लिए 100 साल के बराबर है। उनके 100 साल के लिए वो ठीक है, लेकिन उनके 100 साल हमारे लिए केवल 2 घंटे हैं। तो उसी प्रकार से हमारे 100 साल ऊपर के लोकों के लिए केवल चंद क्षण है, और ब्रह्मा जी का जो एक क्षण है वो हमारे लिए करोड़ों सालों का है। तो पर्यव्रत महाराज ने ऐसे पृथ्वी लोक के समय की तुलना से 110 करोड़ साल राज किया, और हर एक लोक में, हर एक ग्रह में उन्होंने ऐसा अच्छे कायदे नियम बनाए जिससे कि मनुष्य समाज बड़े शांति से सुखपूर्वक रह सके। उन्होंने ये पद्धति स्वीकार बनाई का निर्माण किया कि लोगों के बीच में शांतता रखने के लिए उन्होंने अलग अलग बाउंड्री बनाया, और उन्होंने कहा कि जहां ये सब नदियां हैं और जहां पहाड़ हैं, ये सब लोगों के जमीनों के बीच में विभाजन करने के लिए कार्य रहेंगे, बाउंड्री रहेंगे। और पर्यव्रत महाराज के समय के बाद ये पद्धति शुरू हो गई। हाँ, आजकल हम देखते हैं कि कोई भी कहीं भी लाइन खींचकर बोलते हैं कि ये हमारा है, वो हमारा है, लेकिन पर्यव्रत महाराज ने बड़े अच्छे ढंग से सब कुछ सेट करके रखा था सारे ब्रह्मांड के लिए। इस प्रकार से परीक्षित पर्यव्रत महाराज लंबे समय राज करते करते बड़े ऐश्वर्य से रहते थे। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि रानी बहिष्मती बहुत ही सुंदर थी और राजा पर्यव्रत हमेशा उनके संग में रहते थे, और यहां तक कि उनके साथ में घूमते फिरते थे। और ऐसे कितने साल बीत गए, और 11 अरबुद साल बीत जाने के बाद अचानक एक दिन राजा परिव्रत के मन में एक विचार आया कि अरे, मैं कहां था? गंधमादन पर्वत में तपस्या करता था, नारद मुनि की सेवा करते हुए भगवान का भजन करता था, और कहां मैं 11 अरबुद साल तक केवल मेरे पत्नी के हाथ में, रानी के हाथ में कठपुतली में बन गया और केवल ऐश्वर्य के वातावरण में मैं रह गया, भगवान का भजन मैंने नहीं किया, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, ये मेरा क्या हो गया? तो तुरंत उन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया, त्याग दिया और अपने पुत्रों के हवाले सब कुछ कर दिया। जो सप्त द्वीप थे, हर एक द्वीप में उनके 7 पुत्रों को उन्होंने राजा बनाया। 3 पुत्रों ने तो वैसे ही संन्यास ले लिया था, और फिर खुद प्रियव्रत महाराज संसार को त्याग कर वो वन में चले गए। और फिर अंततः, क्योंकि ये भगवान का वचन था, उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। और प्रियव्रत महाराज के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर दिखाए, जैसे कि दूसरा सूर्य निर्माण करना या भूमंडल का विभाजन करना, ऐसे कार्य जो कि केवल भगवान ही कर सकते थे। इसलिए भगवान ने उनको इतनी अद्भुत शक्ति दी कि वो ऐसे कार्य संपन्न कर सके। तो प्रियव्रत महाराज फिर अपने भक्ति मार्ग में लगे और बहुत भगवान का भजन करके अपने युव अवस्था की जो भावना थी उसको फिर लाए वापस। इसका मतलब ये है कि भक्ति करते करते अगर किसी का पतन हो भी जाए तो फिर भी कोई निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो बताते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे भजन में लगा हुआ है, जो अच्छे कार्य में लगा हुआ है, उसके साथ कभी भी कुछ बुरी चीज नहीं हो सकती है, उसका नाश कभी नहीं होगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता है हे अर्जुन। भक्त का नाश कभी नहीं होता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसकी भक्ति भावना में हमेशा बनाए रखता हूं, और जो भी उसने भजन किया है वो कभी खो नहीं जाएगा, हमेशा उसके पास में रहेगा। इसलिए नारद मुनि श्रीमद् भागवत में व्यास देव को बताते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन अपक्वोत पते ततो यदि यत्र क्ववा भद्रम अभूतमुष्य किम को वार्थ आप तुम अभजताम स्वधर्मतः। वो कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, आप जान लो कि अगर किसी व्यक्ति ने त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने संसारी कार्यों को, अपने स्वधर्म को त्याग दिया, किस लिए त्याग दिया? चरणाम्बुजम हरेर, श्री हरि श्री कृष्ण के पद कमलों की सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए अगर किसी व्यक्ति ने सारे संसार को और कार्यों को त्याग दिया, परंतु भजन अपक्वो, भक्ति मार्ग में कच्चे होने की वजह से, पतेत ततो यदि, अगर उसका पतन हो जाए, अकस्मात, जरूरी नहीं है कि अकस्मात, अगर हो भी जाए, तो वो कहते हैं यत्र क्ववा अभद्रम अभूत अमुष्य किम, उसका क्या नुकसान हुआ? लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भगवान का भजन किया है, तो उसने अगर भगवान का भजन नहीं किया है और सारे संसार को भी प्राप्त किया है, तो वास्तव में उसने क्या प्राप्त किया, उसका क्या फायदा हुआ? क्योंकि मृत्यु के समय सब कुछ समाप्त होने वाला है। अगर हम सारे ब्रह्मांड के राजा भी बने तो हम हमेशा ब्रह्मांड के साथ में नहीं रह सकते, जब मृत्यु आएगी हमारा सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो नारद मुनि कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन भगवान का भक्त नहीं हुआ वो, तो उसने कुछ भी नहीं प्राप्त किया। और अगर किसी व्यक्ति ने सारे संसार के राजपद को भी त्याग कर अगर भगवान का भजन किया और भगवान का भजन करते करते उसका पतन भी हो गया, फिर भी उसका क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, नेहा भिकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायोन विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर थोड़ा भी कोई स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी कोई मेरा भजन करे, मेरी भक्ति करे, तो उसका पतन नहीं होगा, और होगा भी तो मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसका संरक्षण करूंगा, और अगले जन्म में भी वो मेरा स्मरण कर पाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया है हम सब के लिए, तो हमें भक्ति मार्ग बिना घबराए हुए, बिना संकोच किए हुए हमें करना चाहिए। हिचकिचाना नहीं चाहिए कि हम भक्ति करेंगे, आगे चल के अगर हमारा पतन हो गया तो क्या होगा। तो नारद मुनि कहते हैं, कोई नुकसान नहीं, क्या खोया है तुमने, लेकिन कितना पाया? कम से कम थोड़ा समय जब भक्ति किया तो कितना लाभ हुआ उसका। इस प्रकार से प्रियव्रत महाराज अगर थोड़ा बहुत ऐश्वर्य के वातावरण में रहे भी तो उन्होंने क्या खोया, क्योंकि अंततः वो भगवान के धाम को प्राप्त कर पाए। लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि चलो हम भक्ति कर रहे हैं, थोड़ी भक्ति से छुट्टी ले लें और प्रियव्रत महाराज की तरह भी हम रहें, और अंत में हम भी 10 साल 20 साल बाद, हो सकता है 110 करोड़ साल हम जी नहीं पाए, 110 साल भी नहीं, लेकिन 10 साल के बाद हम फिर से भक्ति में आएंगे। कौन कह सकता है क्या होगा 10 साल बाद में? क्या गारंटी है कि हम भक्ति मार्ग में लौट कर आएंगे? वैसे भी मनुष्य जीवन केवल 60-70 साल का है ज्यादा से ज्यादा, जो दुर्भाग्यशाली है वो और ज्यादा जीते हैं आजकल के कलयुग में। तो ऐसे कम आयु होते हुए हमें क्यों ऐसे खतरा अपने आप पे ले लेना चाहिए? मनुष्य जीवन का हर एक क्षण बहुत कीमती है, मूल्यवान है, इसलिए हमें अधिक समय केवल भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, इधर उधर अपना कीमती समय गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए यहां जब बेलगाम में भी हमें राधा गोकुलानंद मंदिर में आने का मौका मिला है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीर्तन करके और हरि कथा सुनकर सेवा करके जवन अपना जीवन सफल बनाने का मौका मिला है, तो उसका पूरा पूरा फायदा हमें लेना चाहिए, और इससे हमारे जीवन को हम सफल बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि अपने जो योगेंद्र बोले वही नवनाथ है क्या? जो आज बोलते हैं नवनाथ है, फिर यो भी योगी थे, तो यही है क्या
नवनाथ?
नवनाथ
कब थे नवनाथ?
ऐसे बताया जाता है कि शिवजी ब्रह्मा के विष्णु के भक्त थे, ऐसा कुछ बताया।
कब हुए, कब, क्या बताया जाता है? ये तो करोड़ों साल पहले की कथा है, बहुत पुरानी कथा है।